آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات میں سومناتھ سوابھیمان پرو میں شرکت کی۔ وزیراعظم کل صبح شوریہ یاترا میں بھی شامل ہوں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زور دے کر کہا ہے کسی بھی ریاست کی ترقی میں امن و قانون کا رول اہم ہوتا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آئی پیک کیس میں کلکتہ ہائی کورٹ کی جانب سے سماعت ملتوی کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی محکمے کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ 2025 میں ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے شعبے میں نمایاں ترقی ہوئی ہے اور غیر زیر زمین ایندھن کی نصب شدہ صلاحیت بڑھ کر 266.78 گیگاواٹ ہو گئی۔ ایران میں احتجاج پورے ملک میں پھیل چکا ہے، سرکار نے کارروائی تیز کر دی ہے۔ کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے ایران آنے اور جانے والی پروازیں معطل یا منسوخ کر دی ہیں۔ اور خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نوی ممبئی میں گجرات جائنٹس نے یو پی واریئرز کو 10 رن سے ہرا دیا۔ ممبئی انڈینز اور ڈیلی کیپٹلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پربھاس پاٹن کے مقام پر سومناتھ سوابھیمان پرو میں شرکت کی۔ بھارت کی مضبوطی اور مزاحمت کا جشن منانے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب مودی گجرات کے 3 دن کے دورے پر آج شام سومناتھ پہنچے۔ ریاست میں سال 1026 میں مندر پر حملے کے 1000 سال پورے ہونے، نیز 1951 میں آزادی کے بعد اس کی بحالی کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس پرو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے مندر کے احاطے میں اومکار جاپ میں بھی حصہ لیا۔ پوجا ارچنا کے بعد پربھاس پاٹن کے آسمان پر شاندار ڈرون شو کا اہتمام کیا گیا۔ جناب مودی کل صبح شوریہ یاترا میں شامل ہوں گے اور سومناتھ مہادیو کی پوجا ارچنا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سومناتھ میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی اس کے بعد راجکوٹ جائیں گے جہاں وہ متحرک گجرات علاقائی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ جن ریاستوں میں امن و قانون کی صورتحال بہتر ہے وہاں سرمایہ کار ہمیشہ زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج جے پور میں کانسٹیبلز کے تقرر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں کے باوجود راجستھان سرکار نے امن و قانون کو خصوصی توجہ دی ہے اور اس کے نتیجے میں ریاست اب سرمایہ کاروں کے لیے ایک ترجیحی مقام کے طور پر ابھری ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جب نوجوانوں کو کسی طرح کی بدعنوانی کے بغیر ملازمت دی جاتی ہے تو ریاست بھی ترقی کرتی ہے۔
کوئی بھی راجیہ، کوئی بھی پردیش تبھی آگے آ سکتا ہے جب جس میں میرٹس ہے ایسے یوواؤں کو وہ آگے بڑھائے۔ کوئی بھی پردیش تبھی آگے آ سکتا ہے کہ راجیہ کے سیوکوں کی بھرتی پاردرشی طریقے سے ہو، اس میں کوئی بھرشٹاچار نہ ہو۔ اور بھجن لال جی نے، کانگریس سرکار نے شروع کیا ہوا پیپر لیک کا سلسلہ بھی سماپت کر کر راجستھان کو اس سے نجات دلانے کا کام کیا۔
نئے بھارتیہ نیائے سنہیتا کی خصوصیات کو اجاگر کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ اس کی پوری طرح نافذ ہو جانے کے بعد ایف آئی آر کے درج ہونے کے 3 سال کے اندر اندر متعلقہ کیسز کی سماعت سپریم کورٹ تک میں ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح بار بار ملتوی کیے جانے کا طویل عرصے سے چلا آ رہا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما نے کہا کہ ان کی سرکار نے پولیس فورس کو جدید طرز پر ڈھالنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس پروگرام کے دوران وزیر داخلہ نے راجستھان پولیس کے نئے بھرتی کیے گئے 10,000 کانسٹیبلز کو تقرر نامے سونپے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے آئی پیک کیس کے سلسلے میں آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ای ڈی نے اس معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی ہے۔ ادھر مغربی بنگال سرکار نے بھی حالی عدالت عالیہ میں ایک اپیل دائر کی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ اسے سماعت کا موقع دیے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے جمعرات کو ای ڈی نے کولکاتہ میں کنسلٹنسی فرم آئی پیک اور اس کے ڈائریکٹر پرتیک جین کے ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی تھی۔ کروڑوں روپے کے مبینہ کوئلہ گھپلے کے کیس میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر تلاشی کی یہ کارروائی کی گئی تھی۔ ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی اس مقام پر داخل ہو گئیں جہاں چھاپے مارنے کی کارروائی کی جا رہی تھی۔ वो कुछ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात समेत अहम सबूत भी अपने साथ ले गईं। दूसरी तरफ मोहतरमा ममता बनर्जी ने मरकजी एजेंसी पर आगे निकलकर काम करने का इल्जाम आयद किया है। इससे कबल ईडी ने कल कलकत्ता हाईकोर्ट से रुजू करके मगरबी बंगाल की वजीर आला के खिलाफ सीबीआई छानबीन की अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत 14 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी के मामले पर बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के तनाजुर में इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में ताजा वोटर फहरिस्तें तैयार करने के अमल की निगरानी के लिए 4 इजाफी खसूसी मुशाहिदीन मुकर्रर किए हैं। चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि 4 आईएएस अफसर निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन मुशाहिदीन की इब्तदाई जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कोई भी अहल वोटर इसमें शामिल होने से न रह जाए और साथ ही फहरिस्त में ऐसे किसी वोटर का नाम ना हो जो अहम नहीं है। ये मुशाहिदीन दावों और इतराजात के निपटाने से लेकर वोटर फहरिस्तों की हतमी अशात तक पूरे अमल की निगरानी करेंगे। इधर रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक मुरासला भेजा है, जिसमें उन्होंने मगरबी बंगाल में एसआईआर का पूरा अमल अंजाम दिए जाने के तरीके पर नाखुशी का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज उजागर किया कि 2025 में मुल्क में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे ने नुमाया तरक्की की है। जहां गैर जेर जमीन ईंधन की नस्ब शुदा सलाहियत बढ़कर 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह इजाफा 2024 के मुकाबले में 22.6% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि साल 2025 के दौरान 49 गीगावाट से ज्यादा नई गैर जेर जमीन तवानाई की सलाहियत शामिल की गई। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि ये रिकॉर्ड तरक्की हुकूमत की फैसलाकुन पॉलिसी समत तवील मुद्दती नजरिए और मुसलसल अमल दरामद का नतीजा है। ये भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी, माहौलियाती जिम्मेदारी और माहौलियात के लिए साजगार खुद कफील मईशत की जानिब सफर को मुस्तहकम करती है, क्योंकि मुल्क 2030 तक गैर जेर जमीन तवानाई की 500 गीगावाट सलाहियत के कौमी हदफ की जानिब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुतालिक वजीर आजम के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संग मील तय किया है। वजीर आजम मोदी ने 2015 में इसका आगाज किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वजीर आजम के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है और ऐसा बरवक्त निगरानी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और दीगर अवामी शिकायत का इजाला करके किया गया है। आज इस खसूसी सीरीज के तहत हम पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत के इन्नोर, तिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टनम, मदुरी, तूतीकोरिन कौमी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं।
ये प्रोजेक्ट मुल्क के जनूबी हिस्से में सबसे अहम माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से मुतालिक लॉजिस्टिक असासों में से एक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साहिली इलाकों और अंदरून मुल्क प्रोडक्शन मकामात से सनती और शहरी मराकज तक कुदरती गैस पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मई 2016 में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी। ये पाइपलाइन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। जिस वक्त प्रगति के तहत इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया तो उस वक्त तक सिर्फ 17.4% पेशरफ्त हुई थी। जायजा मीटिंग के बाद मुतालिका रियासती सरकारों और मरकजी वजारतों ने इस प्रोजेक्ट को तरजीह दी और इसमें तेजी लाई गई। ये पूरा प्रोजेक्ट 25 सितंबर 2023 को शुरू कर दिया गया। दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
कौमी राजधानी में किताबों का 53वां आलमी मेला आज से शुरू हो गया है, जो 9 दिन तक जारी रहेगा। इस किताब मेले में 35 से ज्यादा मुल्कों के 1000 से ज्यादा नाशरीन शिरकत कर रहे हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस किताब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में जनाब प्रधान ने नई दिल्ली के किताब मेले को मुताले के कल्चर का सबसे बड़ा आवामी जश्न करार दिया। उन्होंने कहा कि किताब मेला दुनिया भर के नाशरीन के लिए एक पुरवकार और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन गया है।
पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला यह आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता के एक अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है।
जनाब प्रधान ने कहा कि डिजिटल दौर में जानकारी और इल्म को काबिले रसाई और सभी की शमूलियत वाला बनाना सरकार की तरजीह है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मेले में कौमी ई लाइब्रेरीज के जरिए 23 से ज्यादा जबानों में 5000 से ज्यादा ई बुक्स मुफ्त दस्तियाब होंगी। मीडिया से बात करते हुए जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने नौजवानों में मुताले के रुझान की हौसला अफजाई करने की सरकार की तरजीह को उजागर किया। इस साल के किताब मेले का खास मौजू है भारतीय फौज की तारीख, दिलेरी और दानिशमंदी के 75 साल। इसके तहत खसूसी पवेलियन में फौज की तारीख के बारे में 500 से ज्यादा किताबें नुमाइश के लिए रखी गई हैं और 100 से ज्यादा प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। ये किताब मेला इस महीने की 18 तारीख तक जारी रहेगा। आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल बैरून मुल्क हिंदी जबान के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद बैन अक्वामी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना है। ईरान में बड़े पैमाने पर होने वाला हुकूमत मुखालिफ एहतजाज 14वें रोज में दाखिल हो गया है। इस एहतजाज को 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले मुजाहरे के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए सबसे संगीन चैलेंज समझा जा रहा है। यह एहतजाज 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार में ताजिरों की जानिब से माशी मुश्किलात के खिलाफ हड़तालों से शुरू हुआ था, जो अब तक मुल्क के तमाम 31 सूबों में फैल चुका है। तलबा, मजदूर और आम शहरी भी मुजाहरों में शामिल हो गए हैं। लोग खुलेआम हुकूमत की तब्दीली के लिए नारे लगा रहे हैं। मुजाहिरीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जिला वतन वली अहद रजा पहलवी की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीफोन खिदमात में भी रखना पड़ा है। कई बैन अक्वामी एयरलाइंस ने ईरान के लिए और ईरान से परवाजें मुअत्तल या मनसूख कर दी हैं। हाल ही में जारी किए गए मुतअद्दिद नोटिसेस टू ईयर मिशन से जाहिर होता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिफाई इकदामात में इजाफा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
ईरान की फौज ने कहा है कि वो कलीदी अहमियत के हामिल बुनियादी ढांचे और सरकारी इमलाक का तहफ्फुज़ करेगी और शहरियों से अपील की है कि वो दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाएं। हुकाम ने मुल्क में हालिया बरसों के सबसे बड़े एहतजाज पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ईरानी फौज का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग और वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के अवाम की हिमायत का इजहार किया। मुजाहिरीन को बज़ाहिर अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुसलसल हिमायत के बयान और जिलावतन वली अहद शहजादा रजा पहलवी की अपीलों से हौसला मिल रहा है, जिन्होंने अवाम से सिक्योरिटी फोर्सेज को पसपा करने और शहरों और कस्बों का कंट्रोल संभालने का मुतालबा किया है। ईरान के अंदर मौजूद जराए पर इन्हिसार करने वाले इंसानी हकूक के एक ग्रुप के मुताबिक दिसंबर के आखिर में तेहरान में माशी मुश्किलात के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज के बाद से कम 65 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि ये तहरीक तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई है। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब के बाद हिस्सों में कल बहुत गहरा कोहरा छाए रहने का इम्कान है। आज नवी मुंबई में खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रन से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गुजरात की टीम से बल्लेबाजी करने को कहा। उसने मुकर्रा 20 ओवर्स में 207 रन बनाए। जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट पर 197 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मैच जारी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की। वजीर आजम कल सुबह शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि किसी भी रियासत की तरक्की में अमन कानून का रोल अहम होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आईपैक केस में कलकत्ता हाईकोर्ट की जानिब से समात मुलतवी किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नई और काबिल तजदीद तवानाई महकमे के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 2025 में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है। اور غیر زیر زمین ایندھن کی نصب شدہ صلاحیت بڑھ کر 266.78 گیگا واٹ ہو گئی۔ ایران میں احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا ہے، سرکار نے کارروائی تیز کر دی ہے۔ کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے ایران آنے اور جانے والی پروازیں معطل یا منسوخ کر دی ہیں۔ اور خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نوی ممبئی میں گجرات جائنٹس نے یو پی واریئرز کو 10 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔